ओम शांति। हर की पौड़ी की गंगा और विद्या की देवी सरस्वती, इन दो वरदानों से स्वयं भगवान ने जिनको सजाया है, ऐसी ज्ञान की गंगा, ज्ञान की देवी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं और मुंबई में ही आपको यह बाबा का ज्ञान बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ। न सिर्फ ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन स्वयं बाबा की साकार बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ है। और उसके बाद तो आप लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए और 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी की एग्जाम्स पूरी की समर के समय और सीधा बिना रिजल्ट का इंतजार किए पहुंच गए मधुबन धरनी पर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए और बाबा को दीदी से बहुत आशाएं थी और इसलिए अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और बाबा पहले चले गए, इसलिए वो मन में कसक थी कि बस पढ़ाई पूरी हो और बाबा की सेवा में लग जाए। तो बिना रिजल्ट का इंतजार किए पहुंच गए मधुबन और टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड की और टीचर्स ट्रेनिंग में तैयार होके बाबा ने आपको विविध सेवा स्थानों पर भेजा। वहां गए, जैसे कि आपके राजकोट में ही दीदी पहले आए, फिर बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर बाबा ने आपको भेजा, जहां आपने खूब दिल लगाकर सेवा की। बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के छुपे हुए रतन निकालने के आपने बहुत अपने प्रयास किए और उनको निकाला। और फिर 1976 में जब आप मधुबन में आए, आते तो हर वर्ष थे, लेकिन 1976 का वर्ष आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा कि जिस वर्ष आपको ऑफर मिला मधुबन निवासी बनने का और आपने उस ऑफर को स्वीकार किया, परिणाम स्वरूप 1976 से आज दिन तक आप इस मधुबन धरनी में रहकर देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब तक आपने 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण कर बाबा की सेवाएं की हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, पांडव भवन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं और पांडव भवन में जो विदेशियों के प्रोग्राम चलते हैं उनके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ इंटरनेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल इंटरप्रेटर हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो मीडिया की सेवाएं अभी हम देख रहे हैं, 24 घंटे हमारी चैनल्स चल रही हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो आप ही पहला स्पीकर थी जी जागरण के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी को मीडिया में स्थान मिला और वो सेवाएं आज कहाँ तक पहुंच गई है वो हम सब जानते हैं। तो अनेक सेवाओं का फाउंडेशन में आपका रहने का बहुत बड़ा भाग्य रहा है। और इतना ही नहीं, बाबा से, मम्मा से, आदि रतन दादियों से जो पालना ली है, अब उस पालना का रिटर्न आप देते रहते हैं और इसलिए मधुबन में भल दादियां अव्यक्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपसे सभी को वो दादियों की पालना की भासना मिलती रहती है। तो आज हम दीदी से वो प्यार वाली पालना भी अनुभव महसूस करेंगे और साथ साथ ज्ञान का डायरेक्शन भी, कि आज हमारा भट्टी का उद्घाटन है। तो भट्टी का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, संपन्नता की ओर बढ़ना है, लेकिन बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करके। तो आज दीदी को हमने टॉपिक दिया है ब्राह्मण जीवन में एक का क्या महत्व है, जो कल बाबा की मुरली में ये बार बार बाबा ने अंडरलाइन कराया। तो ब्राह्मण जीवन में एक का क्या महत्व है, इस पर मार्गदर्शन देते हुए दीदी भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। तो सुनते हैं दीदी को। आदरणीय दीदी जी, शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे ज्ञान मिला और 1998 में मधुबन बेहद घर से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हुई। आरंभ के दिनों में हम ज्ञान सरोवर में रहे इस पार्क ऑफिस में 5 वर्ष सेवाएं दी, जहां बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के, जो इतनी मोटी है, जिसका नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो लिटरेचर में भी सेल होती है। और उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और चूंकि इस पार्क से जुड़े हुए थे, तो रमेश भाई उषा दीदी से जुड़े हुए थे, उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूंकि शुरुआत तो हेडक्वार्टर से हुई थी, तो पुनः हेडक्वार्टर में अवसर मिला। तो वर्ष 2009 से हम पांडव भवन में शीलू बहन के ग्लोबल ऑफिस में बैठते हैं और उनकी जो सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा के घर में इस मधुबन स्वर्ग आश्रम में सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से तथा हमारी ओर से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर मौका है आपको यहाँ 4 दिन भट्टी करने का। अभी 3 दिन तो बहुत गर्मी थी और आज समाचार है कि अभी मौसम में टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ज़रूर यहाँ माउंट आबू में बाहरी मौसम होगा। हाँ, आप लोग आए हो तो बाहरी मौसम ले आए हो। हाँ, तो बहुत अच्छा। बहुत राजकोट में भी गर्मी तो बहुत होगी ना। लेकिन यहाँ आप ठंडक महसूस करेंगे सवेरे सवेरे और शाम को खास। और जैसे बताया कि हमने अपनी समर्पित जीवन राजकोट से शुरू की, यहाँ जब भट्टी हुई, ट्रेनिंग हुई बहनों की बाबा के अव्यक्त होने के बाद 69 में, तो 1 महीने की ट्रेनिंग थी। हम सब कुमारियाँ अपने अपने घरों से आई थी और उस समय अव्यक्त बाप दादा ने कहा 1 मास की थियोरेटिकल ट्रेनिंग की है, अभी 1 मास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने कोई सेंटर पर जाओ। तो हमने राजकोट चुना और हम भारती दीदी ने मुझे पसंद किया उसी समय, क्योंकि सेंटर नया नया राजकोट में खुला था 69 में और उनको भी हैंड की ज़रूरत थी, तो भारती दीदी मुझे राजकोट लेके गई थी। उस समय हमको याद है, पता नहीं वहाँ के कोई है उस समय 69 के, 53 साल हो गए उसको, 69 इस समय तो कोई नहीं, लेकिन वो एक थे अपने भाई जो आइसक्रीम वाले, क्या मोल जी भाई, हाँ अभी तो है शरीर में, शरीर छोड़ दिया, तो मूल जी भाई बाबा के बहुत अनन्य रत्न थे। किसने देखा था मूल जी भाई को? बस आप दोनों ने देखा था। अच्छा, सब उसके बाद आए हैं। तो मूल जी भाई तो राजकोट की नींव थे, और कैसे बाबा की सेवाएं राजकोट में शुरू की, तो भारती दीदी के साथ मैं 3 महीना रही थी राजकोट में। परंतु जैसे बताया, हम कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आए थे, तो फिर से मुंबई वापस जाना पड़ा सब सर्टिफिकेट लेने लिए, मार्कशीट लेने के लिए, और फिर तो बाबा ने मुझे और बेहद सेवा पर भेजा। तो ऐसे हमारी यात्रा शुरू हुई, लेकिन पहली पालना सेवा केंद्र पर रहकर सच्ची ट्रेनिंग हमने भारती दीदी से राजकोट में पाई। तो ये भी तो राजकोट तो हमारे लिए बहुत प्रिय है अवश्य। और वहाँ वो सबसे पहली शिविर कराई थी मैंने राजकोट में, उससे भी बहुत भाई बहने निकले थे, जो नलनी बहन ये सब ना जो अहमदाबाद में है अभी, ये सब कौन जी, वीर बाला बहन ये सब बहुत, वो जो पुरानी जो राजकोट के हैं वो सब उसमें उसी समय निकले थे। फिर तो सब बेहद की सेवा में गए, लेकिन वो 3 महीना मैं भूल नहीं सकती हूँ ज़रूर। तो जब मैं राजकोट के भाई बहनों को देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है ज़रूर। और भारती दीदी ने तो फिर दोबारा भी बुलाया था, मेरे पास फोटोज़ भी है कैसे वहाँ सेवा की, रोटरी क्लब में कई जगह पर सेवा हुई है। फिर से हम 2 बार गए उसके बाद भी, और हम देख रहे हैं राजकोट में कैसे इतनी सेवाएं बढ़ गई है, कितने सेवा केंद्र है, और रिट्रीट सेंटर भी बनाया। हाँ अच्छा, अभी बीच में आपकी वो गोल्डन जुबली थी, तो मुझे कहा था कि आप आओ, लेकिन यहाँ तो कुछ कई प्रोग्राम्स थे, तो हमने कहा नहीं फिर ज़रूर हम आएंगे, तो ज़रूर आएंगे आप, दीदी तो बुलाते रहते हैं। लेकिन आज आप भट्ठी करने आए हो तो ज़रूर एक बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के आए हो, ऐसी योग तपस्या करनी है जो हम बाबा के जो कदम है उन पर चल करके हम बाप समान बन सकें। लेकिन बाप समान बनना है ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, पर उसके लिए क्या करना होगा? ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हुए, पर कैसे अव्यक्त हुए? बाप शिव बाबा के इतने आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार रहे, जो बाप शिव बाबा ने कहा एक तुरंत रूप उन्होंने उसका पालन किया, एक धक से त्याग किया, धक से उनको वैराग्य आ गया, तो वो तो ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल थे। लेकिन हम सबको वैसे ही फॉलो तो करना ही है, परंतु आज का जो विषय हमने चुना है एक का महत्व। कल बाबा की मुरली सबने सुनी? जिन्होंने नहीं सुनी हाथ उठाए। कल की मुरली, अव्यक्त मुरली सबने सुनी, जिसमें बाबा ने कहा तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य जब होगा तभी तपस्या कर सकेंगे, और बेहद का वैराग्य माना ही एक को महत्व देना। भक्ति मार्ग में तो अनेकों को याद करते हैं, इसलिए व्यभिचारी भक्ति मानी गई है। सबके आगे सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, उनको तो ऊंच मानते और खुद को नीच पापी कहते हैं। लेकिन भगवान ने हमको कितना ऊंचा उठाया है और एक ही लक्ष्य दिया है कि केवल मुझे याद करो, बस एक को पहचानो। आज भी बाबा ने कहा बीज एक है, उस एक बीज को पकड़ो तो सारा वृक्ष आपके हाथ में आ जाएगा। हाँ, जैसे कहानी मिसाल देते ना, एक कहानी है कि एक राजा था, उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सौगातें थी, तो उसने ऐलान करवाया कि ये सब मेरे पास चीज़ें हैं, हर एक जो भी उस रजवाड़े राजाई में थे, रजवाड़े में, उन सबको कहा कि आप महल में आओ और इन सब चीज़ों में से एक चीज़ लेकर जाओ। तो सब आए, भीड़ लग गई, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, तो जो उनको पसंद आई वो लेकर गए। लेकिन एक बच्ची आई, छोटी सी बच्ची, वो भी लेने लिए आई, तो राजा ने उसको देखा, अब ये क्या लेती है। वो देखती रही देखती रही देखती रही, चीज़ें तो बहुत सुंदर थी लेकिन कहीं पर भी उसकी नज़र नहीं गई, कहीं भी आँख नहीं डूबी, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो राजा ने उसको बुलाया अपने पास और कहा कि आपने इतनी देर से आप देख रही हो, आपने कोई एक चीज़ तो लो, आप इतनी सुंदर चीज़ें। तो उस बच्ची ने क्या किया, राजा को ही पकड़ लिया राजा को ही पकड़ लिया। तो राजा जैसे उनको ये मेरा है, अब राजा को पकड़ा माना सब कुछ उसका। तो इसीलिए बाबा भी क्या कहते हैं, बीज को पकड़ो, तो बीज को पकड़ा तो सारा झाड़ तुम्हारा, बीज को पानी दो तो सब पत्तों को पानी पहुंच जाएगा। कई कहते हैं ना, सारी दुनिया को प्यार दो, लव एवरीवन, सबको प्यार दो, यही भगवान से प्रीत है। भगवान से प्रीत तब होगी जब सबको प्यार दो। और हम क्या कहते हैं, एक भगवान से प्रीत रखो तो सबसे प्रीत हो जाएगी। एक 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 से अलग से प्रीत रखने की जरूरत नहीं है, एक भगवान से प्रीत रखो तो एक भगवान से प्रीत होगी माना सब उनके बच्चे हैं, तो अवश्य सब बच्चों से भी प्रीत है क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में एक का महत्व बहुत ज़बरदस्त है और बाबा यही सिखाते हैं कि एक लिखना कितना सहज है। कभी बाबा कहते बिंदी, अब एक पेंसिल लो और कागज़ पर खाली एक बिंदु लगाओ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो जैसे बिंदु लगाना सहज है, वैसे एक लगाना भी तो सहज है ना, दो ऐसे करो, तीन ऐसे करो, चार ऐसे, तो थोड़ा तो समय लगेगा लेकिन एक एक लगाना कितना सहज है। सब भाषाओं में एक ऐसा ही होता है, एक, और कई भाषाओं में दो तीन चार अलग अलग होंगे उनके लिखत, लेकिन एक जो है वो सब में एक ही है। तो इसीलिए बाबा कहते एक को पकड़ो, रचयिता एक है, रचना भी एक है, और रचना एक है माना वो रचना उस रचयिता को बहुत प्यारी है। जैसे एक ही बच्चा होता है तो कितना प्रिय होता है माँ बाप का, तो भगवान की हम सब रचना है, भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि हमको परमात्मा प्रिय है। तो बाबा हमें यही सिखाते, एक के महत्व को जानो, एक से ही सुनो। अभी गीत भी सुना ना, एक को ही देखो, एक से ही सुनो, एक से ही प्रीत रखो, एक से ही खाओ, एक से ही पियो, एक से ही खेलो, एक, बस एक। तो एक ही बुद्धि में हो तो क्या होगा, एक की लगन अगर होगी तो उसको कहते हैं बाबा एक व्रता। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है वैसे उसका वो केवल उसकी दृष्टि पति पर ही जाती है, भले कहीं भी होगी वो अपने पति को ही देखेगी, पति थोड़ा दूर भी बैठा होगा तो उसकी नज़र वहीं जाएगी, है पता है अपने पति को देख रही है, और पति की नज़र किस पर जाएगी अपनी पत्नी पर। यहाँ भी कई बार देखते हैं माताएं बैठती ना आगे, उनका पति बैठा पहले देखेगी आया कि नहीं आया है और कई बार वो भी देखेगा कि आई है कि नहीं आई है, और तरफ बुद्धि नहीं जाएगी लेकिन उस तरफ तो जाएगी बुद्धि। तो इसको कहते एक व्रता। तो हमारा सब संबंध अभी किसके साथ है, एक बाबा के साथ है, इसलिए एक साथ सर्व संबंध जोड़ना है। बाकी सबके साथ निभाना जरूर है, तोड़ना नहीं है, निभाना जरूर है तोड़ना भी नहीं है, लेकिन न्यारा प्यारा भी रहना है, क्योंकि सब संबंध हमारा एक बाबा के साथ है। तो हर संबंध हमारा शिव बाबा के साथ है, बिंदु के साथ है। अब लौकिक पति होगा तो एक ही संबंध होगा ना, पति बस, वो भाई तो नहीं कहलाएगा, बेटा तो नहीं कहलाएगा, बाप तो नहीं कहलाएगा। एक भाई था, वो अपना वो जब भी भाषण करता था तो पहले कहता था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसकी पत्नी भी सभा में बैठी होती थी, तो पत्नी बड़ी गुस्से होती थी, मैं तुम्हारी बहन थोड़ी हूँ तो उसने अपना भाषण का वो शुरुआत चेंज किया, एक के सिवाय बाकी सब भाई बहन है एक के सिवाय, लेकिन हम थोड़ी ऐसे कहेंगे, कहेंगे क्या तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आत्मा के नाते भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे होने के नाते भाई बहन। तो आज कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि चाहे कोई कितना कितनी भी ग्लानी करता हो हमारी, तुम लोग ऐसे हो ऐसे हो, तो क्या कहेगा, ओ तुम ब्रह्मा कुमारी ऐसे हो, तुम ब्रह्मा कुमार ऐसे हो, तो ब्रह्मा का तो नाम लेते हैं ना भले और कैसे भी ग्लानी करे लेकिन ब्रह्मा का नाम लेते हैं, तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा का नाम लेते, तुम ब्रह्मा कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार ऐसे, तो ब्रह्मा बाबा को वो भी याद करते हैं। तो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, और बाबा कई बार कहते देखते भी हैं ब्रह्मा कुमारियाँ तो भी उनको समझ में नहीं आता ये ब्रह्मा कुमारी क्या होता है, ब्रह्मा तो शब्द भूल जाते हैं, ब्रह्म ही कह देते हैं, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारी। अब ब्रह्म की तो कोई कुमारी होती नहीं है, होती है क्या, ब्रह्म तो महतत्व है, लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्म में का वो का अंतर भी नहीं समझते, फिर कई कह देंगे अहम ही अहम ब्रह्मास्मि, तो वो समझते ये ब्रह्म की कुमार कुमारियाँ हैं, तो क्योंकि परमात्मा कौन है उसकी पहचान नहीं है, या तो फिर कह देंगे जो आपका इष्ट है उनको याद करो, कोई राम को याद करेगा, कोई कृष्ण को याद करेगा, कोई हनुमान को याद करेगा, कोई गणेश को याद करेगा, कोई देवी को याद करेगा, लेकिन परमात्मा एक है जो सबसे ऊंचा है, उसको तो जानते ही नहीं, और हम बच्चों ने उसको जान लिया है। कई कहते हैं ना हम लोगों को, ब्रह्मा कुमारियाँ आप लोग भगवान को नहीं मानते हो क्योंकि पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई आप पूजा का उस रूप से तो सामग्री नहीं है, तो इसलिए अभिषेक करना चलो शिव को भी मानते हैं पर वो अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर वो भी हम नहीं करते हैं। तो कई समझते ना कि आप लोग तो नास्तिक हो, आप लोग भगवान को नहीं मानते हो, तो हम क्या कहते हैं, हम मानते तो क्या, हम उनको जानते भी हैं, हम उनको पहचानते भी हैं, उनको हम याद भी करते हैं और उनसे वर्षा भी ले रहे हैं। आप लोग कहते हो मानते नहीं, हम तो उनसे बहुत आगे हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अधिकार से कहते हैं कि हमने उनको पहचाना है। तो क्यों नहीं मानेंगे। कई कहते हैं आप शास्त्रों को नहीं मानती हो, तो परसों भी बाबा ने कहा कि शास्त्रों को कैसे नहीं मानते, हम देख रहे हैं है तो मानेंगे ना, कोई चीज़ है दिखाई दे रही है तो मानेंगे कैसे नहीं। अब कोई कहे कि आम को हम नहीं मानते, पर आम कोई लाकर दे तो हम कहेंगे क्या आम को मानते नहीं, है ना सामने आम। तो शास्त्र तो है, जानते हैं हम, मानते हैं कि है ये शास्त्र, ये द्वापर कलयुग में है। लेकिन अब हमको भगवान ने उनका सार बता दिया है। तो इसीलिए जब हम एक कहते हैं तो एक के महत्व को अगर समझना है तो एक से ही प्रीत रखो, क्योंकि अनेकों से प्रीत होगी तो फिर वो एक खिसक जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पारे के समान है बाबा की याद। पारा देखा है आप लोगों ने, मर्क्यूरी कहते हैं पारा, हाँ वो थर्मामीटर में पारा होता है, वो ये पारा ऊपर जाता है नीचे आता है। तो अगर आप, हम लोग, मैं साइंस की विद्यार्थी रही हूँ, तो पारा हम हाथ लगाने की कोशिश करते थे तो वो गोल गोल माना गोल हो जाता था, लिक्विड भी नहीं था, सॉलिड भी नहीं, सेमी सॉलिड, तो उसको जैसे पकड़ने जाओ खिसक जाएगा। हाँ किसने किसने नहीं देखा है पारा, सबने देखा है पारा, देखा है सबने। तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करो खिसक जाएगा, पकड़ने में नहीं आता है, हाथ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार बाबा की याद भी पारा की तरह है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। साकार को तो समझना तो बहुत सहज है, साकार दिखाई देता है। तो फिर कई बच्चे कहते बाबा साकार तो दिखाई देता, उनको याद करना तो सहज है, पर निराकार को कैसे याद करें। तो बाबा कहते हैं तुम भी तो निराकार हो ना, तुम भी तो निराकार हो, तो तुम अपने आप को कैसे पहचानते हो, तुम भी तो निराकार हो। पर हम समझ सकते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो अवश्य मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, ये शरीर तो साधन है। तो जैसे आत्मा हम समझते हैं मैं हूँ, तो परमात्मा को भी पहले समझना होगा, फिर उनसे सर्व संबंध जोड़ते हैं हम। कैसे संबंध जोड़ते हैं? क्योंकि निराकार से सब संबंध जोड़ना है, साकार से तो सब संबंध जोड़ नहीं सकते, एक ही संबंध होगा। चलो दो संबंध होंगे, दो बहनें होगी, वो देरानी जेठानी भी बन जाती है ना, कई बार दो भाइयों से उनका विवाह होता है एक ही घर में, तो देरानी जेठानी भी बन गई और बहनें तो है ही है। पर चलो कितने भी दो तीन संबंध भी हो, लेकिन सर्व संबंध तो किसी एक से तो हो ही नहीं सकते। और यहाँ हम क्या कहते हैं, सब संबंध एक के साथ, और उसको कहते हैं एक व्रता। एक व्रता होंगे तब केवल एक को ही देखेंगे। और कैसे देखना है, क्योंकि मैं अपने आप को भी इन आंखों से तो देख नहीं सकती, लेकिन समझ सकती हूँ। तो इसी प्रकार एक को ही देखना माना उस एक को ही समझना, उस एक से ही सर्व मेरे संबंध है, उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है। तो जब हम शिव बाबा कहते हैं तो इतना प्यार से शिव बाबा कहते हैं, ताकि ऐसे महसूस हो कि और तो कोई मेरे लिए संसार में है ही नहीं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, आप मोए मर गई दुनिया। मनुष्य मर जाता है तो दुनिया मर जाती है उसके लिए, मरी गया तो दुनिया पहले खत्म हो गई ना उसके लिए। तो आप मोए मर गई दुनिया, अर्थात पहले हमें जीते जी मरना होगा। इसलिए देह से देह के सब संबंधों को भूलो। पर देह से देह के सब संबंधों को भूलने के लिए पहले एक से संबंध जोड़ो, फिर अपने आप सब भूल जाएंगे, सब संबंध बुद्धि से हट जाएंगे। तो पहले जोड़ना है, पहले तोड़ना नहीं है। जैसे बाबा मिसाल देते, नया मकान बना है, फिर पुराने को तोड़ो। अब नया बना ही नहीं है, पुराने को तोड़ देंगे तो फिर कहाँ रहेंगे। इसलिए पुराने में रहकर नया बना रहे हैं, फिर नया बन गया, फिर पुराने को तोड़ेंगे। तो ये नहीं कि सर्व संबंध बुद्धि हटाओ, परंतु एक से जोड़ो पहले, फिर सब अपने आप हट जाएंगे। तो एक से सर्व संबंध जोड़ने से सब कैसे संबंध टूट जाते हैं, ये सबको अनुभव होना चाहिए। पर अगर बुद्धि कहीं जाती है तो बाबा कई बार मिसाल देते हैं, जिस संबंध में बुद्धि गई, लौकिक में, मानो किसी न किसी जन्म में उस संबंध का आपको अभाव महसूस होगा, और इस जन्म में सब संबंध बाबा से जोड़े तो 84 जन्म आपको कोई भी लौकिक संबंध का अभाव महसूस नहीं होगा। समझ गई बात? मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी सदगुरु साजन बच्चा, बाबा कहते हैं पहले बच्चा बनाओ, फिर तुम बच्चों को बाबा, तुम बच्चों पर बाबा बलिहार जाते, पहले तुम बलिहार जाओ। तो अगर समझो किसी की माँ गुजर गई बचपन में, माँ को देखा ही नहीं, पैदा हुए और माँ चली गई, अवश्य किसी इस संगम पर बाबा को माँ रूप में नहीं देखा होगा, हम तो ये मानेंगे। कुछ तो होगा कमी, कुछ कमी होगी, तो कुछ कमी है, पर सब संबंध बाबा के साथ है। मेरे माँ भी वही है, पिता भी वही है, भले ब्रह्मा द्वारा वो ब्रह्मा माँ बनती है, लेकिन पारलौकिक रूप से तो एक ही है सब कुछ हमारा। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं भी उनको याद करता हूँ। तो इसीलिए अगर एक से सर्व संबंध है, हर वक्त कुछ भी हो, पहले बाबा, पहले शिव बाबा, पहले शिव बाबा, बच्चा बना तो भी पहले शिव बाबा बच्चा। एक हमारे पास परिवार आए थे युगल, दो बच्चे थे उनके, तो माता ने कहा मेरे तीन बच्चे, तो मैंने कहा तीसरा कहाँ है, तो कहा वो तो शिव बाबा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा शिव बाबा को आपने बच्चा बनाया, बड़ा बच्चा बनाया या छोटा बच्चा बनाया? दो बेटे ही थे, बेटी नहीं थी। तो आप शिव बाबा आपका बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने, कहा जब हमको कुछ राय सलाह लेनी होती है तो मैं बाबा को बड़ा बेटा बनाती हूँ, और जब बाबा से कुछ काम लेना है तो मैं छोटा बेटा बना देती हूँ। जैसे छोटे बच्चे को कहेंगे बेटा वो ले आओ, हाँ मेरा चप्पल ले आओ, मेरा जूता ले आओ, मेरा फलाना ले आओ, और बड़े बेटे को तो नहीं कहेंगे ना, बड़ा बेटा तो बाप समान है, तो उनसे राय सलाह लेते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा भी है तो छोटा बेटा भी है, तो ऐसे ही हंसी मजाक में। तो उनके बच्चों से मैंने पूछा, तो शिव बाबा आपका भाई है, आपने उसको बड़ा बनाया या छोटा बनाया? तो कहते जो मम्मी ने बनाया वो हमने ही बनाया। मतलब प्यार से कहा, सारा परिवार ज्ञान में। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है, छोटा बच्चा या बड़ा बेटा, कहीं तो बाबा को छोटा बच्चा कहते ना, दो लौकिक और एक पारलौकिक, तो माना बाबा आपका छोटा बच्चा हुआ, पर बाबा आपका बड़ा बेटा होगा तो वो बाकी जो लौकिक बच्चे हैं वो आप, वो उनकी कार्बन कॉपी बनेंगे, फोटोस्टेट कॉपी। अगर ओरिजिनल बहुत अच्छी कॉपी है तो फोटोस्टेट कॉपी कैसी बनेगी? वो भी अच्छी बनेगी ना। अगर ओरिजिनल ही डल है तो क्या होगा? फिर फोटोकॉपी भी ऐसे ही हो जाएगी। तो ओरिजिनल बहुत अच्छी, तो ओरिजिनल माना पहला बच्चा बाबा। इसलिए कई मैंने देखा बाबा के बच्चे, बाबा को कैसे बच्चा बनाया है, तो हर चीज पहले बाबा, पहले बाबा का शेयर, कोई फल आया पहले बाबा के पास, पहले मधुबन, पहले सेंटर, हाँ पहले, और अच्छे से अच्छी चीज पहले सेंटर। तो माना बाबा को बड़ा बेटा बनाया, तो बड़ा बेटा तो वो तो बहुत काम का होगा, छोटे बच्चे को तो हमको सेवा करनी पड़ेगी उनकी, और बड़ा बेटा तो सेवा करेगा ना, दोनों ही करेंगे। लेकिन हर संबंध बाबा के साथ, ये है एक व्रता बनना। तो हर एक अपने अंदर ये चेकिंग करे, सब संबंध मेरे बाबा के साथ है, बाकी औरों के साथ निभाना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। और बाबा ये भी कहते आखिर ये सब यहीं चुकतू करने हैं, नया कोई हिसाब किताब बनाना नहीं है। क्योंकि अगर नए हिसाब किताब कोई बनाएंगे तो फिर चुकतू कब करेंगे। पर एक से सर्व संबंध है, तो ये संबंध जो बाकी हिसाब किताब है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होते जाएंगे। हमने तो ये अनुभव किया है, कई ग्लानी करते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन जब हमारी स्थिति को देखते हैं कि इनकी इतनी ऊंच स्थिति है, तो आखिर वो भी नमन करते हैं और कहेंगे आप लोग तो महान हो। परंतु उनको वो महानता तब दिखाई दे जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची देखे। अगर स्थिति हमारी ऊंची नहीं देखते तो फिर उस महानता से कहाँ देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सब संबंध बाबा के साथ है तो जो बाबा के गुण है वो मेरे गुण भी अनुभव होने चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब शिव बाबा के गुणों को अपनाया। हम चलो आपने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा को तो देखा ना। अव्यक्त बाप दादा को जब हम देखते थे, कैसे सारे जो भी शिव बाबा की महिमा है वो सब अव्यक्त बाप दादा से दिखाई देते थे। प्रेम तो भंडार प्रेम का, शांति तो भंडार शांति की, खुशी तो भंडार, सब कुछ बेहद। और ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे। तो बाबा कहते हैं बस कॉपी करो, कॉपी करना सहज है। बाबा कैसे थे, अव्यक्त बाप दादा की छवि लाओ। कुछ भी मानो हो गया, कुछ भी हो गया, आवाज हो रहा है, कोई ऐसे कुछ हुआ, लेकिन बाबा कैसे न्यारे प्यारे। मैं कई किस्से सुनाती हूँ। कल भी जैसे बाबा की मुरली में था, तो बाबा की मुरली शाम को चली और सवेरे संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। संतरी दादी हमारी बहुत प्यारी दादी थी, ओरिजिनल शुरू की भाऊ विश्व किशोर की लौकिक में युगल थी, और बाबा की लौकिक में उनके भाई का बेटा था विश्व किशोर भाऊ, उनकी युगल थी। और तो जैसे बाबा समर्पित हुए वो दोनों ही समर्पित हुए, और वो बस एक शिव एक बाबा दूसरा न कोई, पता भी नहीं चलता था कि विश्व किशोर भाऊ और संतरी दादी ये युगल है, किसी को नहीं पता चलता था। यज्ञ में तो बिल्कुल ये फनक भी नहीं आती थी लौकिक संबंधों की, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं आती थी। तो सवेरे बाबा वो संतरी दादी ने शरीर छोड़ा, जो कल मुरली चली है ना, उस दिन 90 की मुरली। अब बाबा के आगे दादियां थी, तो बाबा को बताया कि बाबा ऐसे शरीर छोड़ा, सवेरे 4 बजे के अंदर शरीर छोड़ा। 3 बजे उठी थी, इंद्रप्रस्थ में रहती थी निर्मल शांता दादी का जो कमरा, वही इंद्रप्रस्थ में, एक तरफ दादी जानकी, दादी चंद्रमणि थी उस समय कुछ ऐसे, वो इंद्रप्रस्थ में। रात को हम लोग बैठे थे 10 बजे तक, बहुत अच्छी अच्छी बातें दादी से सुनी, निर्मल शांता दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, इंद्रप्रस्थ में हम मिले। लेकिन सवेरे 3 बजे वो उठी है, हमेशा उठती थी, लेकिन 3 बजे उठने के बाद फिर थोड़ी लेटी। अब 4 बज गए अभी तक उठी नहीं, तो जो उनको संभालती थी उसने कहा मैं अभी तक नहीं उठी है, शायद तबीयत ठीक नहीं थी तो लेटी होगी। तो फिर जैसे गई और हिलाया तो वो तो है ही नहीं, किस समय शरीर छोड़ा पता नहीं। तो सवेरे उठने की तो आदत ही थी वैसे भी, तो वो नींद में या लेटी होगी और आत्मा उड़ गई। तो ये बाबा को समाचार शाम को दिया कि बाबा ऐसे संती दादी गई। तो बाबा ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है माना हाँ, कैसे उनका पाठ समाप्त हुआ और वो इतनी न्यारी प्यारी थी जो बात मत पूछो। हम दूसरा मिसाल देते हैं कि एक कैसे हमारी विदेश की बहन थी, सैली नाम था, तो वो यहाँ मधुबन में, मतलब विदेशी जैसे आते हैं वो भी आई थी, तो यहाँ बहुत बीमार हो गई। उनको वैसे भी तकलीफ थी, दमा की तकलीफ थी, तो बीमार हो गई, निमोनिया हो गया, तो एडमिट थी हॉस्पिटल में, ठंडी भी बहुत थी, अपना ध्यान इतना दिया नहीं होगा, तो एडमिट थी। तो लेकिन वो धीरे धीरे तबीयत और बिगड़ती गई, और 18 जनवरी के दिन शाम को बाबा आए हुए थे शांतिवन में, और यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में उसने 7:30 बजे शरीर छोड़ा। अब उसी समय निर्वैर भाई ने बाबा को ये समाचार सुनाया, बाबा सैली गई, सैली उसका नाम था, सैली गई। बाबा को बताया तो था सीरियस है, तो बाबा सैली गई। तो बाबा ने उसी समय एक जैसे कुछ सेकंड बिल्कुल शांत हुए, बाबा ने कहा गई नहीं आई, समझ गए, आई माना बाबा के पास तो गई। हमारे से के लिए कहेंगे गई, पर बाबा के लिए आई। तो उसने कहा गई नहीं आई। अब क्या कहेंगे, वो तो कितना वो कहा कि भाई जैसे गई, माना हम लोग क्या सोचते ये गई, पर बाबा के लिए तो गई शब्द है ही नहीं, क्योंकि बाबा के लिए तो सब आत्मा ही है। और वतन में गई, बाबा के पास तो पहुंची, वतन में गई, उनका है ना ठिकाना बाबा के पास। तो ये जैसे बाबा की वो अवस्था थी, हमारी ऐसी अवस्था है, कोई आश्चर्य भी न लगे। मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, एक हमारे वरिष्ठ भाई थे, तो अचानक वो जा रहे थे, बेंगलोर जा रहे थे, तो भोली दादी से मिले और भोली दादी से मिले और टोली वगैरह कुछ ले रहे थे, तो वो एक किचन में खड़े थे, लेते मतलब बात करते करते अचानक भोली दादी के कंधे पर ही उनका सिर गिरा और एकदम वो उसको पकड़ा और उसको ले गए कमरे में। तो उसी समय डॉक्टर को बुलाया, तो जैसे डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो गया, मतलब हार्ट फेल कम्प्लीटली। तो वो भाई जो डॉक्टर को लाया था वो तो आश्चर्य खाने लगा। डॉक्टर ने कहा आश्चर्य क्यों खाते हो, हर एक को एक दिन मरना है क्या, आश्चर्य क्यों खाते हो, हर एक को मरना है एक दिन, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे। डॉक्टर ज्ञान दे रहा है, डॉक्टर उसको ज्ञान दे रहा है। तो देखो आप सोचो कि आखिर तो सबको जाना है ना, और सबको बाबा के पास जाना है, हमारी दादियां अव्यक्त हो गई तो हम सब भी तो जाएंगे ना। इसलिए बाबा बेहद का वैराग्य सिखा रहे पहले से। कल भी बाबा ने कहा जो जिनके अंदर बेहद का वैराग्य होगा वो तो सहज वापस जा सकेंगे, पर जिनको नहीं होगा उनके लिए मेहनत लगेगी, क्योंकि मन से त्यागना ये मेहनत का काम लगेगा, और हमारे लिए एक सेकंड में न्यारे हो सकते हैं, एक सेकंड में न्यारे, हाँ मुझे अनुभव है एक सेकंड में न्यारा होने का। हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जबरदस्त एक्सीडेंट था। हम पालनपुर से आबू आ रहे थे, शाम का समय था, हम पीछे 3 बहनें बैठी थी और आगे 2 भाई बैठे थे। तो अचानक क्या हुआ, वो हमारा जो ड्राइवर था उसने गया, ये ट्राइबल लोग होते हैं ना, ये आदिवासी, तो वो लकड़ी काट करके जंगल से लेके आ रहे थे, यहाँ जंगल ही था सारा, तो वो सिर पर लकड़ियों का ढेर था और अचानक आ गया, रास्ता बिल्कुल साफ था, कोई नहीं था, और अचानक वो छोटा सा एक पहाड़ था उसमें से आगे आ गया और हमारी गाड़ी आई आ पहुंच गई। तो हमारे ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक क्या लगी पता नहीं, पर एक्सल जैसे टूट गया और वो व्हील को ऐसे घुमाया ताकि साइड में हो सके, उसको बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसका पैर आ गया व्हील के नीचे, चक्कर उसके नीचे, और जो उसके वो लकड़ियां थी ना सिर पर, वो सब उछल करके हमारी गाड़ी की स्क्रीन पर आ गए, ऊपर जो आगे का स्क्रीन है ना, तो विंडो स्क्रीन उस पर आ गया, और वो विंडो वो शीशा सारा चूर 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 हो गया, और ये गाड़ी एकदम मुड़ी और इतना आवाज़ हुआ, और आवाज़ क्या हुआ, तो उस समय वो खाई थी, एक वो गाड़ी खाई में जा सकती थी, एक पिलर था उस पिलर को लग सकती थी मानो, क्योंकि जोर से घुमाया और वो तो गिर गया। तो क्या हुआ, तो उस समय हम तो पीछे बैठे थे, साइड में बैठे थे, अब अचानक जैसे हुआ, तो मैंने उस समय बाबा को कहा बाबा हम आ रहे हैं बस बाबा की याद, हम आ रहे हैं। और एकदम मुझे तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे मैं इतनी एकदम अशरीरी हो गई, बिल्कुल अशरीरी हो गई, जैसे हार्ट बीट भी सब बंद हो गया, बस हम आ रहे, एकदम लाइट हो गई। अब उसी समय जैसे ये मुड़ा मुड़ी ना गाड़ी, तो वो जो बीच में बहन बैठी थी वो तो दुबली पतली थी, तो वो तो सीट के नीचे ही चली गई, और जो उस तरफ बैठी थी वो मोटी थी, वो मेरे ऊपर आकर के गिरी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी। लेकिन हमको तो, मैं इतनी अशरीरी हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और फिर जब आंख खोली तो हम तो जिंदा थे तो परंतु न वो पिलर को लगी और न ही खाई में गिरी, वहां पर वो झाड़ियां थी और वो झाड़ियों पर वो गाड़ी जाकर के झाड़ियों पर ऐसी लेट गई, धीरे धीरे झाड़ियों पर जाके लेट गई। और हम सब इतने सुरक्षित थे, एक खरोच भी नहीं आई, जैसे बाबा ने हम लोगों को जैसे वो अपने हाथों में ले लिया। तो नेक्स्ट डे बाबा आने वाले थे, अव्यक्त बाप दादा, तो हम जो पांच जने थे, अपना ही भाई था जो गाड़ी चला रहा था, तो हम पांच जने थे और हम सब अव्यक्त बाप दादा के पास गए। तो बाबा ने हम बच्चों को देखा और बाबा ने कहा कि आप सबका हिसाब किताब उस आत्मा को जाके लगा। अब उनको समझ में नहीं आया क्या मतलब इसका, यानी हम लोगों को कुछ नहीं हुआ और उस आदमी की, उसको पैर में वो पांव टूट गया और फिर उसको तो हॉस्पिटल ले गए, उसका ब्रेन को लगा, बेहोश हो गया, फिर तो पता, फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, तो केस बना, बहुत कुछ हुआ और हमको भी जाना पड़ा, ये कोर्ट में जाना पड़ा साक्षी होने, क्योंकि हम तो पीछे बैठे थे। लेकिन वो तो फिर जल्दी खत्म हो गया। लेकिन कहने का भाव है, बाबा ने कहा आप सबका हिसाब किताब उस आत्मा को जाके लगा, ये बाबा के शब्द थे, पर हमने समझा नहीं इसका मतलब था, उसको कैसे हिसाब किताब लगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी तो चूर हो गई, कोई देखता गाड़ी को तो उसको ऐसे लगता कोई ना कोई ने इसमें कोई ना कोई मर गए होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब ये भी बाबा की कमाल थी। पर मैं क्यों ये बता रही हूं, क्योंकि उस समय बाबा याद आए और कुछ याद ना आए, बस एक, वो एक ही याद आए, एक के सिवा और कोई बुद्धि में ना आए। पर उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास। और अशरीरी बनना माना पहले एक व्रता बनना, एक व्रता बनते तब अशरीरी बन सकते हैं, अगर एक व्रता नहीं है तो अशरीरी भी नहीं बन सकेंगे। और बहुत काल का अभ्यास अशरीरी बन का होगा तब हम एवर रेडी कहला सकेंगे, क्योंकि अचानक बाबा कहते कुछ ना कुछ होगा, अचानक होगा, सब अचानक होना है, तो अचानक होने लिए तो हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, और हर वक्त तैयार रहने लिए हर वक्त अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। इसीलिए एक व्रता होना बहुत जरूरी है। फिर एक व्रता के साथ साथ एक का दूसरा कौन सा शब्द है, बाबा कहते एकाग्रता, मन बुद्धि की इतनी एकाग्रता हो उसके लिए फोकस हमारा बहुत सही होना चाहिए। जैसे बाबा को लगन लग गई ना, मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। आज भी बाबा की मुरली में था कि जैसे ब्रह्मा बाबा को बताया गुलजार दादी ने कि आपका संपूर्ण स्वरूप वतन में है, तो बाबा को क्या बुद्धि में, बस मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो कैसे बाबा अशरीरी हो जाते थे, संपूर्ण बनना है, एक के सिवाय और कोई नहीं, बस एक की लगन और एकदम मन इतना एकाग्र। जब बाबा जब एकाग्र मन होता था तो कैसे बाबा कहीं भी नहीं बुद्धि जाती थी, हम तो दादियों को देखते थे, दादियों को, जब दादी बैठती थी योग में, बस कितना भी आवाज हो लेकिन दादी का ध्यान कभी नहीं जाता था। अब ऐसी एक व्रता हो, एक की लगन हो, इतनी एकाग्रता हो, इकोनॉमी हो, ये सब एक का पार्ट पक्का होगा तो अवश्य हम अपने मन बुद्धि को इतना स्थिर कर सकेंगे जो हर परिस्थिति में हम सहज ही स्थिर बन करके एक बाबा की लगन में रहेंगे। फिर जो बाबा को कराना है कराएंगे, हम तो बाबा को समर्पित है। चलो तो सदा एक का पाठ पक्का रहे, तो एक से मिलते हुए कितने शब्द हैं वो अगर सदा याद रखेंगे तो बस एक की ही लगन में होंगे। एक एक, हाँ कुछ भी हो एक। यहाँ से ये एक का पाठ इतना पक्का करके जाओ जो और कोई याद आए नहीं, उनकी ही याद हो, उनके साथ ही बैठो, खाओ पियो, बस ये रहा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बीच में बाबा की एक मुरली चली थी, भक्ति मार्ग में भी हमने यही भगवान को कहा, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। फिर जब बाबा के बने तब भी बाबा को यही वायदा दिया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो भक्ति मार्ग में भी वायदा किया, ज्ञान मार्ग में भी वायदा किया, तो वायदा निभाओ। बाबा याद दिला रहे हैं वो वायदा निभाओ। तो बाबा वायदा याद दिला रहे हैं, फिर खुद भी वायदा कर रहे हैं, बच्चे तो मुझे याद करोगे तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो भगवान का वायदा भी याद हो, तुम हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी। पर हम लोग कभी कभी क्या करते, बाबा मदद नहीं करता, हिम्मत रखो तो मदद क्यों नहीं मिलेगी। तो पहला कदम किसका होना चाहिए, हमारा या बाबा का? बिल्कुल, अगर हमारा एक कदम है तो बाबा के 100 कदम है। पर कई कहेंगे बाबा हिम्मत भी आप ही दो, मदद तो करो पर हिम्मत भी आप ही दो। तो बाबा कहेगा पहला कदम तो आपका होना चाहिए ना, तभी तो बाबा मदद करेंगे। आप कदम पर कदम रखो तो बाबा मदद करेगा। एक क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कहानी आती है, वो खास करके जो उनकी सेमेट्रीज है ना जहाँ दफनाते हैं क्रिश्चियन लोग, तो वहाँ बाहर लिखा रहता है। तो वो कहानी क्या बताते हैं कि एक भक्त था, वो ईश्वर को कहता था, हे भगवान हाँ मुझे हर वक्त आप मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप मेरे कदम पर चलो, मेरे कदम पर कदम रखो तो तुमको मदद मिल जाएगी। तो फिर वो सपन में देखता है कि मैं कदम पर कदम रख रहा हूँ और भगवान की हमको बहुत मदद मिलती है। तो फिर उसने देखा कि एक समय ऐसा आया जो वो जो 4 कदम थे उसकी बजाय केवल 2 ही कदम थे, तो वो केवल मेरे कदम थे, भगवान के तो कदम थे ही नहीं, ऐसे उसने सोचा। तो भगवान को कहा कि जब ऐसी आपद का समय आया तो उस समय तो आप मेरे साथ है ही नहीं, केवल 2 ही कदम थे, 4 तो थे ही नहीं। तो भगवान ने उनको कहा, बच्चे उस समय मैंने तुमको उठा लिया था, तो वो कदम तुम्हारे नहीं थे, वो किसके थे? वो मेरे थे। तो उठा लिया था, जो उठा लिया किसको उठा लेंगे, तो कदम थोड़ी पड़ेंगे। हाँ तो ये नहीं सोचो बाबा की मदद नहीं है, पर तुम हिम्मत का कदम रखो तो बाबा की मदद है। और जब वो मदद मिलेगी और फिर ऐसी आप कुछ ऐसा आया भी कठिन समय, तो बाबा आपको ऐसे उड़ा देगा, ऐसे उठा लेगा पंख देकर, आपको पता भी नहीं चलेगा वो विघ्न कैसे चला गया। पर हिम्मत पहले अपनी रखो, वो नहीं छोड़ो, ठीक है ना। तो बस एक को याद किया, एक से संबंध है, तो देखो हमको कोई डर की बात ही नहीं है, बाबा का हाथ पक्का है, बाबा तो कभी छोड़ेगा नहीं, पर हम न छोड़ें, वो तो नहीं छोड़ेगा। चलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति।